घर, परिवार और बच्चे।
प्रिय श्रोताओ, घर, परिवार और बच्चे कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछली कड़ी में बच्चों की परवरिश या पालन पोषण के संदर्भ में हमने दो मूल दृष्टिकोणों की ओर संकेत किया था, पारंपरिक दृष्टिकोण और पश्चिमी दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण के मुताबिक बच्चों की इस प्रकार परवरिश की जाए कि अच्छे कर्मों की उनमें ऐसी आदत पड़ जाए कि एक प्रकार से वो उनके स्वभाव का भाग बन जाए। अगर शिक्षा दीक्षा द्वारा नैतिक गुण इंसान के स्वभाव में शामिल नहीं हुए हैं तो वे स्थायी नहीं हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में समाप्त हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण के आलोचक इस पर सबसे पहली आपत्ति ये करते हैं कि परवरिश की ये शैली कर्म के मूल्य को नष्ट कर देती है और इंसान मूल्यों के दृष्टिगत नहीं बल्कि अपनी आदत के तहत कोई अच्छा काम करता है या बुरे काम से बचता है। इंसान को अगर किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उससे उसे लगाव हो जाता है और वो उसे किसी मशीन की भांति अंजाम देता चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर ये साबित किया जाए कि जो काम वो आदत के अनुसार अंजाम दे रहा है अतार्किक है और इसे अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, तब भी वो उसे करता है।
आलोचकों का कहना है कि जब इंसान कोई काम आदत के तौर पर अंजाम देता है तो चयन की शक्ति, स्वतंत्रता और आंतरिक इच्छा कमजोर पड़ जाते हैं। प्रसिद्ध पश्चिमी दार्शनिक इमानुएल कांट का कहना है कि व्यक्ति की आदतें जितनी अधिक होंगी उसकी बौद्धिक स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता उतनी कम हो जाएगी। आलोचकों का तर्क है कि आदत इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है, इसीलिए आदत किसी भी चीज की हो वो बुरी है।
इस संदर्भ में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों को उनकी अधिक नमाजों, अधिक रोज़ा रखने, अधिक हज करने, रातों को इबादत करने से मत परखो, बल्कि उन्हें उनकी बातों में सच्चाई और अमानत को लौटाने से परखो। इसी संदर्भ में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों की लंबी लंबी नमाजों की ओर मत देखो क्योंकि इसकी उन्हें आदत हो गई है। हाँ, अगर उन्हें आजमाना ही है तो सच्चाई और अमानत की वापसी से उन्हें परखो।
इन हदीसों से इस दृष्टिकोण के आलोचकों की ये बात सिद्ध हो जाती है कि आदत से किसी भी काम का नैतिक मूल्य समाप्त हो जाता है और हर अच्छा काम करने वाला जरूरी नहीं है कि अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता एवं इच्छा शक्ति के साथ उस काम को अंजाम दे रहा हो। लेकिन कुछ अच्छे काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंसान कभी भी आदत के तौर पर नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों के आधार पर अंजाम देता है। ऐसे ही दो उदाहरणों का उल्लेख हदीस में किया गया है।
बच्चों की परवरिश की पारंपरिक शैली के आलोचकों का कहना है कि इंसान जिस तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ काम केवल आदत के अनुसार करता है और उन कामों के मौलिक मूल्य या नकारात्मक आयाम उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार वो सामाजिक जीवन में भी संस्कृति या धर्म के नाम पर कुछ ऐसे काम अंजाम देता है कि न केवल वो उनके मौलिक मूल्यों से अवगत नहीं होता बल्कि अगर उसे उन कामों के नकारात्मक आयामों की ओर से सचेत भी किया जाए तो भी वो उन्हें जारी रखने पर आग्रह करता है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किसी चीज़ का आदि नहीं बनाना चाहिए, बल्कि परवरिश का मतलब ये है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाए और उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाया जाए ताकि मूल्यों के आधार पर तार्किक रूप से किसी काम को अंजाम दें या उसे अंजाम न दें।
जब हम बच्चों की परवरिश की पारंपरिक शैली की आलोचना की विवेचना करते हैं तो मोटे तौर पर हमें उनका तर्क मजबूत लगता है और ये भी स्वीकार करते हैं कि किसी काम को आदत के तहत अंजाम देने से उसके नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि पूर्ण रूप से आदत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। आदत दो प्रकार की होती है। एक आदत वो होती है कि जो किसी अच्छे काम को बार बार अंजाम देने से पड़ती है। इंसान उस काम को उसके नैतिक मूल्यों के दृष्टिगत अंजाम देता है और उसके महत्व के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसके साथ कोई बाहरी कारण भी उसे उस काम को करने के लिए प्रेरित या बाध्य नहीं करता है। कला, अनुशासन, बड़ों का सम्मान और दान देने जैसे कार्यों की आदत को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इंसान इस प्रकार के कामों की आदत केवल उनसे लगाव के कारण नहीं डालता है बल्कि उनके मूल्यों के दृष्टिगत उन्हें बार बार करता है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी इच्छा शक्ति कमजोर न पड़े और वो उन्हें व्यवस्थित ढंग से करता रहे। इस संदर्भ में दूसरा बिंदु यह है कि इस प्रकार के कामों की आदत से इंसान के लिए वो काम भी आसान हो जाते हैं कि जो उसके स्वभाव के लिए कठिन प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह सवेरे उठकर इबादत करना या व्यायाम करना। इंसान इस काम को उसके महत्व एवं मूल्यों के दृष्टिगत अंजाम देता है जबकि कोई बाहरी कारक उसे ऐसा करने पर बाध्य नहीं कर रहा होता है बल्कि अनुशासन के साथ वो इसे इसलिए बार बार करता है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि कड़ाके की ठंड में भी उसकी इच्छा शक्ति कमजोर न पड़े और बार बार करने से वो काम उसके लिए आसान हो जाए। दूसरे शब्दों में शुरू में वो अपने स्वभाव के हाथों मजबूर था लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसके समानांतर एक दूसरी शक्ति उत्पन्न कर ली। अब वो अपने स्वभाव और इच्छा शक्ति के बीच आज़ाद होता है और उसके सामने दो समान विकल्प होते हैं कि कड़ाके की ठंड में सुबह सवेरे उठकर इबादत करे या सूर्य उदय होने तक गर्म बिस्तर में मीठी नींद का आनंद ले। इस प्रकार की आदत को बुरा नहीं कहा जा सकता और न ही ये इंसान की बौद्धिक क्षमता एवं इच्छा शक्ति को कमज़ोर करके उसे अपना दास बनाती है।
दूसरे प्रकार की आदत की जिसके कारण इंसान को किसी काम या चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है वो आदत है कि जो किसी बाहरी कारक से प्रभावित होकर पड़ती है। उदाहरण के रूप में धूम्रपान की आदत। ये आदत इंसान को तंबाकू के धुएं को फेफड़ों तक पहुंचाने से पड़ती है अर्थात तंबाकू और उसमें मौजूद निकोटीन इस आदत के बाहरी कारक हैं। बाहरी कारकों द्वारा पड़ने वाली आदतें ही सामान्य तौर पर ऐसी आदतें होती हैं कि जिनमें इंसान में अत्यधिक लगाव की भावना उत्पन्न होती है कि जिसे सामान्य शब्दों में नशे की स्थिति भी कहा जा सकता है। हाँ, इस प्रकार की किसी भी आदत को बुरी आदत कहा जा सकता है, वो चाहे किसी अच्छे काम की आदत हो या बुरे काम की। यही आदत इंसान की इच्छा शक्ति और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है और उसकी नैतिक एवं बौद्धिक आज़ादी के मार्ग में रुकावट बनती है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बच्चों की पारंपरिक पालन पोषण की शैली को पूर्ण रूप से नहीं नकारा जा सकता और उसके गुणों एवं विशेषताओं से आज भी भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार पश्चिमी शैली की अपनी विशेषताएं और त्रुटियां हैं जिसकी विवेचना हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। इसके अलावा अगले कार्यक्रम में हम इन प्रश्नों का भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि पालन पोषण या बच्चों को संस्कारित बनाने का सही समय क्या है अर्थात किस आयु से उनकी परवरिश शुरू करें।